जुर्म की तफ्तीश के सिलसिले में किसी मुश्तबा औरत को जो है वो देखा जा सकता है। जिस तरह हमें सूरत मुमतहिना में जो है वो एक बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि कुरैश के लोगों ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दिया है, तो आपने मक्का पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू की। और आपने जब मक्का पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू की तो चंद मखसूस सहाबा के सिवा और किसी को ये राज नहीं बताया कि आप ये मुहिम करने वाले हैं। उसी जमाने में मक्का से एक औरत आई जो पहले बनी अब्दुल मुतलिब की लौंडी थी, फिर आजाद होकर गाने बजाने का काम करने लगी। इसने हजूर से अपनी तंगदस्ती की शिकायत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ माली मदद मांगी। आपने बनी अब्दुल मुतलिब और जो बनी अब्दुल मुतलिब वाले थे, खानदान वाले लोग थे, उनसे अपील की और उसकी हाजत पूरी की। जब वो मक्का जाने लगी तो हजरत हातिब बिन अबी बलता, ये बदरी सहाबा थे, बदरी सहाबा में से थे, हजरत हातिब बिन अबी बलता, इनसे इससे मिले इस औरत से, और इसको चुपके से एक खत बास सरदारा ने मक्का के नाम दिया और 10 दिनार दिए ताकि वो राज फाश ना करे और छुपा कर ये खत उन लोगों तक पहुंचा दे। अभी वो मदीना से रवाना ही हुई थी कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर मुतला किया। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत मिकदाद बिन अस्वद को इसके पीछे भेजा और हुक्म दिया कि तेजी से जाओ रोजा खाक खाक के मकाम पर, ये मदीना से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक जगह थी मक्का की तरफ ना, कहा कि तेजी से जाओ, तुमको एक औरत मिलेगी जिसके पास मुशरकीन के नाम हातिब का एक खत है, जिस तरह भी हो इससे वो खत हासिल करो। रसूल अल्लाह के अल्फाज क्या थे, जिस तरह भी हो वो खत उसे हासिल करो, अगर वो दे दे तो उसे छोड़ देना, ना दे तो इसको कत्ल कर देना। ये हजरात जब इस मकाम पर पहुंचे तो औरत वहां मौजूद थी, उन्होंने इसे खत मांगा तो इसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। उन्होंने तलाशी ली मगर कोई खत ना निकला। आखिर को उन्होंने कहा खत हमारे हवाले कर दो वरना हम बरहना करके नंगा करके तेरी तलाशी लेंगे। जब इसने देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं है तो अपनी चोटी में से वो खत निकालकर उन्हें दे दिया और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। खोलकर खत पढ़ा गया तो इसमें कुरैश के लोगों को ये इत्तला दी गई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर चढ़ाई की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल तो तफ्तीश जुर्म के सिलसिले में जो है वो देखा जा सकता है। इसी तरह नंबर 3, अदालत में गवाही के मौके पर, अब औरत गवाह बनकर आ जाए, अब गवाही देने वाली कौन है, तो अदालत में गवाही के मौके पर काजी का किसी गवाह औरत को देखना ये भी जायज है। अब एक नजर तो नहीं, काजी तो फिर देख रहा है ना। इसी तरह नंबर 4 क्या बात पता चलती है, इलाज के लिए डॉक्टर का मरीजा को देखना, कोई बीमार है तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर का जो है वो देखना, इसकी भी जो है वो इजाजत है। अच्छा फिर इसी के अंदर ये हुक्म भी आता है कि गस्ले बसर जो है इसके अंदर ये बात भी शामिल होती है कि आदमी किसी औरत या मर्द के सतर पर निगाह ना डाले, कि मर्द जो है ये नहीं जैसे नजर जो नीची रखनी है या निगाहों को बचाना है, इससे मुराद क्या है कि मर्द मर्द की मकामे सतर को भी नहीं देखेगा और औरत के ऊपर भी नजर नहीं डालेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे। ये मुसनद अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिजी की रवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे फरमाया, हजरत अली से फरमाया कि किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान पर निगाह ना डालो। तो ये सारी बातें जो हैं इससे क्या बात पता चलती है कि गज़े बसर की हदायत बड़ी अहम हदायत है और निगाह ही दर हकीकत मर्द और औरत के दरमियान अवलीन कासिद का काम देती है। अवलीन कासिद, अगर किसी के ऊपर ईमानदारी के साथ कोई शख्स पहरे बिठा दे तो वो शैतान के फिर बहुत से फितनों से बच जाता है। यानी अगर नजर पर इंसान पहरे बिठा दे तो नतीजा क्या निकलता है, तो बहुत से शैतानी कामों से जो है वो बच जाता है, बहुत से फितनों से महफूज हो जाता है। तो ये बात जो है वो बहुत अहम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो गस्से बसर की जो है वो हदायत की कि کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی نظروں میں سے بچا کر رکھیں، یعنی وہ نظریں جو شہوت کی ہیں، جو بری ہیں، ایک کے بعد جو دوسری نظر ہے اس کو جو ہے وہ بچا کر رکھے، یا فضو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں پر جو دوسرا حکم دیا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو شرمگاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفظ فروج، حفظ فروج میں اس سے مراد ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں، نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اس میں زنا، عمل قوم لوط، دو عورتوں کا باہمی سہاق، باہمی چمٹنا جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز حرام چیزیں میں شامل ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم عورتوں کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں آنے کا کہا گیا ہے، تو اگر اس سے ہٹ کر آیا جاتا ہے، جیسے پیچھے سے کوئی آتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور اس میں جو ہے وہ اورل سیکس جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، یہ جائز نہیں ہیں۔ اور فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب کیا تھا؟ نگاہ، اور آخری نتیجہ کیا ہے؟ زنا۔ تو شروع اللہ تعالیٰ نے بات کی یغضوا من ابصارہم اور اختتام کیا ویحفظوا فروجہم، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ درمیان میں جو کچھ ہے نا وہ سارا بھی اس کے اندر آ گیا، ایسی شہوت کی باتیں کرنا اور باتیں سننا اور اس کی طرف چل کر جانا اور ہاتھ لگانا اور جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ ضمناً آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عبیدہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا قول ہے کہ جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہو سب کبیرہ ہی ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ابتدا کا ذکر کیا، وہ ہے جو ہے وہ دیدہ بازی، نظر سے زنا، اور دوسری طرف انتہا کا ذکر کیا اور وہ ہے زنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ناجائز شہوت رانی سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، اور جو ہے وہ مرد کے لیے جو ستر کے حدود مقرر ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا ستر کیا بتایا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو مرد کا ستر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے۔ اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصدن کھولنا حرام ہے۔ اور حضرت جرحد، یہ ایک اصحاب صفہ میں سے تھے، بزرگ تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی۔ آپ سوچیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کی ران کھلی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے۔ آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی ننگا رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو۔ لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. کسی آدمی نے پوچھا، اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے شرم کی جائے. تو جب آپ اکیلے ہیں تو کون ہے؟ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اور اللہ رب العزت ہے ہمارے ساتھ. تو اس وقت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ننگا رہنا یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میں جو ہوں وہ ننگا رہوں، بلکہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور حفظ فروج جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ تقویٰ کا جو ہے وہ اعلیٰ معیار ہے. اچھا، حفظ فروج میں پھر کیا بات، نچوڑ کیا سامنے آیا، عملی اصول کیا سامنے آیا، سب سے اہم چیز کیا ہے حفظ فروج میں؟ اصلی پھر دخل لباس کو ہے. یعنی اگر کوئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ لباس اس کا باقری نہ ہونا چاہیے. فیشن کے شوق نے، لباس نے ایسی جو ہے ایجادات کی ہیں، نت نئے ایسے فیشن اور طریقے سامنے آتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے نا ستر کا بالکل غائب ہو گیا ہے، صرف زینت کا مقصد رہ گیا ہے. دیکھیں، عورتوں کا رونا تو ہے ہی کہ عورتیں بے لباس ہو گئی ہیں، بے حجاب ہو گئی ہیں. نیکی جو ہے وہ سر چھپا کر چلتی ہے، بدی دندناتی پھرتی ہے. لیکن اب مردوں نے بھی وہ لباس اختیار کیا ہے کہ شریفوں کی کسی مجلس میں جانے کا وہ حق نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے مرد کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، عورت ننگی ہوتی ہے اور مرد پینٹ میں بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نیکر پہنتے ہیں، یہ شارٹ جو پہنتے ہیں مرد اور لڑکے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ناف تک نہیں ہوتی. یہ خاص طور پہ جو گرمیوں کا موسم آتا ہے تو جو ہے وہ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹے، شوہر، بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ جو بھی یہ شارٹس یا نیکر جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ مرد کا سطح جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. تو کیا گھٹنا جو ہے وہ اس میں چھپ رہا ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ اس میں چھپ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں پہنا جا سکتا. تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ اگر پہن لیا ہے نا. تو یہ بات بھی بہت اہم ہے. اور پھر اللہ رب العزت کا یہ اعلان کرنا کہ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ اچھا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ اس کے لیے زیادہ بہترین ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا نا. یہ پاکیزگی کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. اور بعض وہ کہتے ہیں نا جی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، دل کے اندر حیا ہونا چاہیے. تو دل میں بھی ہونا چاہیے، نظروں میں بھی ہونا چاہیے، لباس میں بھی ہونا چاہیے. مومن تو ہوتا ہی سراپا تقویٰ ہے، سراپا حیا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ جو ہے وہ باخبر رہتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو اللہ کی صفت علم کی بار بار یاد دہانی. پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں معمولی سے فرق کے ساتھ، واللہ بما تعملون علیم، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اور آج کے سبق میں پھر یہ بات آ گئی، کیونکہ ہمارے نفس کے اندر بڑے چور دروازے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات رشتے دار رہ رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں، اور یہ مغرب کی دنیا میں یہ کرائے کی بچت کے لیے اور سٹیٹس کے لیے، تو بعض اوقات غیر لوگ بھی آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو ہے وہ بار بار کسی دوسرے کی عورت کو دیکھنا، اس سے بے حجابانہ اختلاط ہونا، میل جول ہونا، تو وہ بہت بڑی جو ہے وہ تباہیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. کہ جو ہے وہ جیسے ایک دفعہ ایک عورت نے امریکہ میں یہ بات بتائی کہ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ میری دیورانی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ اس کے الفاظ تھے نا. और अब आप देखें कि जब हदूद का ख्याल ना रखा जाए, हदूद का जब ख्याल ना रखा जाए तो क्या है कि इंसान ही है ना, वो किसी वक्त भी बहक सकता है, शैतान उसको किसी वक्त भी बुराई पर जो है ना आमादा कर सकता है। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि बगैर जरूरत के खामखा जो है वो इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। अगर वाकई कोई मजबूरी है, कोई हकीकी जरूरत है तो ठीक है, यानी बूढ़े वालदैन हैं तो उनको औलाद को छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक वक्त था कि बच्चे छोटे छोटे थे और गोश का लोथड़ा थे जब बच्चे, तो माँ बाप ने पाल पोस कर उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, वो जॉब करने लगे। तो अब बच्चे जो ही जब जॉब करने लगे और अब माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियों का ढांचा बन गए हैं, अब उनको जरूरत है कि कोई उनको दबाए, कोई उनको चाय दे, खाना दे और उनकी खैरियत पूछे, उनको दवाई दे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाए। तो वो कहने जी हमारी लाइफ और हमारी बीवी और हमारे बच्चे, तो मतलब ये चीज तो ज्यादती है। और बाज़ औक़ात बाज़ सासों की ये बड़ी ख्वाहिश होती है, सास ससुर की बड़ी ख्वाहिश होती है कि सारे जो देवर जेठ है ना ये मिलजुल कर रहे। तो अगर वो कमा रहे हैं और सास ससुर को कोई ऐसा माशी मसला नहीं है तो उनको अलग अलग कर देना चाहिए, ताकि मतलब वो जायज तौर पर अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करें और खामखा लोग आपस में दूसरे को आजमाइश में ना डाल दें। और दूसरी बात जो इससे पता चलती है वो ये है कि बूढ़े माँ बाप या जो वालदैन है ना, उनका ख्याल रखना जो है वो औलाद की जो है वो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वह बिल वालदैन एहसाना। तो इंसान जो कुछ भी करता है अल्लाह की हदों को तोड़ता है। बाज़ औक़ात तो होता है कि आप जब किसी को नजर भर के देख रहे होते हैं उनको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आपको तो पता चल रहा होता है ना, जैसे मर्द देख रहा है, तो ये चीज जो है वो गुनाह है कि किसी की तरफ जो है वो नजर भर कर जो है वो देखा जाए किसी की भी औरत की तरफ। और हमारे यहाँ आजकल नजर भर कर देखना जैसे तस्वीरें हैं, और इसी तरह ये जो शादियां होती हैं और इसमें दुल्हन की मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें ली जाती हैं, अब तो ऐसा लगता है कि दुल्हन और शरीफ लड़कियों की जो तस्वीरें हैं उन्होंने तो फिल्मों के पोज जो है ना उनको भी मांद कर दिया, उनको भी पीछे छोड़ दिया। यकीन नहीं आता कि ये किसी शरीफ जैसे एक बाहया जो लड़की है या औरत है ना, ये उसकी तस्वीरें हैं। वैसे तो तस्वीरों की जरूरत ही क्या है, मेरी और आपकी तस्वीरें फरिश्ते बना रहे हैं ना हमारे हर पोज की। जब हम जो है वो माई फत्तो बने हुए होते हैं तब भी हमारी तस्वीरें बनती हैं, कमीज किसी रंग की, शलवार किसी रंग की, बाल उभरे हुए हैं, बाल उठे हुए हैं, गुस्से में हैं, तो वो तस्वीरें भी फरिश्तों ने ले ली हैं। और जब हम किसी की गिबत चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, है ना, इसी तरह मर्दों की जो तस्वीरें हैं वो भी फरिश्ते ले रहे हैं, सबकी, यानी तमाम दुनिया के लोगों की ले रहे हैं ना। मुसलमान तो खास तौर पर डरते हैं इसके बाद के इस बात पर के किरामन कातिबीन, तो वो मुअज्जज लिखने वाले हैं, या लमूना मा तफलून, तुम जो करते हो वो लिखते चले जाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, तुम्हारी जबानों से जो कुछ निकलता है वो लिखते चले जाते हैं, है ना। तो अब आप देखें कि इससे क्या बात पता चलती है कि जो है वो ये शादी के मौके पर जैसे दुल्हन की तस्वीरें और लड़की सजी हुई होती है, और बाज़ औक़ात वो होती नहीं जो उसको बनाकर पेश कर दिया जाता है, जिस तरह से उसको बनाया संवारा जाता है कि उसकी शक्ल ही बदल जाती है, ये ऐसी सजावट भी नहीं करनी चाहिए, ये भी धोखा है। एक दफा एक औरत कहने लगी कि हमें जो है किसी लड़की की तस्वीर दिखाई गई और बाद में लड़की ऐसी नहीं थी, हमने तस्वीर पर फैसला किया लेकिन लड़की ऐसी नहीं थी जैसी तस्वीर दिखाई गई थी। तो ये चीजें सारी अल्लाह के यहाँ जो है ना ये पूछ का जरिया बनेंगी। तो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हम दुनिया को धोखा दे दें तो क्या अल्लाह को भी धोखा दे सकते हैं? इसी तरह दुल्हन की तस्वीरें, और मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि शौहर की गैरत को क्या हो जाता है जो ड्राइंग रूम में दुल्हन की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, या एल्बम में लगी हुई होती हैं, या वीडियो बनी हुई होती है, तो शौहर है तो वो अपने दोस्तों को दिखा रहा है और कजन लेके जा रहे हैं, मर्द खींच रहे हैं, मर्द लेके जा रहे हैं। तो ये सब एक तो तस्वीर का बनाना बगैर जरूरत के, और दूसरा जो है फिर उनको अपने ड्राइंग रूम की जीनत बना देना ताकि गैर हर मर्द आने वाला हर मर्द उससे अपनी आंखों को सेके। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर मुझे और आपको जरूर सोचना चाहिए ना। और इसी तरह जो है वो गैर औरत को देखना, जैसे दुल्हन को बना संवार कर जो है स्टेज पर बिठाना और फिर सब लोग आके शादी में उसको देख रहे हैं, दूल्हा आया तो पूरे दोस्तों के झुरमट में आया है, पूरे कजन और लोगों के झुरमट में आया है, उसके बगैर वो आ ही नहीं सकता। और वैसे तो जरूरत भी नहीं होती कि मर्द जो है वो औरतों में आए, तो दुल्हन को तैयार तो इसीलिए किया ना, दूल्हा के पास ही तो उसने जाना है, दुल्हन की तो दुल्हाई के लिए तो तैयार किया है ना, उसी का सबसे ज्यादा हक है। तो सबर की बात है, थोड़ी देर में दुल्हन चली जाएगी ना उसके पास, इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही, तो जरूरत नहीं होती हदों से बाहर निकलने की। और अगर चलो खानदान की बूढ़ी औरतें बड़ी औरतें सब जमा हैं और वो दुल्हा को सलाम करना चाहती हैं या दुल्हा उनको सलाम करना चाहता है, मिलना भी चाहता है, तो उसमें आप देखना देख लें कि दुल्हन के अलावा और भी लड़कियां कितनी बनी संवरी भी होती है ना। तो कैसे कुछ ऐसे किया जाए कि ये जो रस्में हैं इसमें से जो गैर इस्लामी चीजें हैं ना उनको निकाला जाए। तो कब निकालेंगे, जब मेरे और आपके अंदर जो है वो तकवा होगा, जब तकवा की बहार होगी, जब तकवा की धूमधाम होगी, जब तकवा की हुकूमत होगी, जब तकवा और अल्लाह का डर और खौफ जो है वो हम मुझ पर और आप पर गालिब होगा, तो फिर इंसान सारे गमों से बेनियाज हो जाता है। फिर वो इस बात एक दुल्हन सिर्फ इस बात पे रोती रही कि उसकी वीडियो नहीं बन सकी, उसकी तस्वीरें ठीक नहीं आई, उसका पोज ठीक नहीं आया, और एक दुल्हन जो है वो किसी ने उसको देखा तो वो बड़ी लंबी लग रही थी और दूल्हा छोटे लग रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भी ये कैसे, तो उसने कहा कि असल में ये जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं उन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी कि तुमने अपनी गर्दन को सीधा रखना था कि तुम लंबी रखो, और उस गर्दन उसने ऐसे अकड़ाई हुई थी अपनी, तो कहती उसकी तो गर्दन ही थक गई मेरी बेटी की ना। अब मुझे बताएं कि अब गर्दन तो झुकाए तो फिर ही जिंदगी गुजरती है, सरे नियाज झुकाया तो फिर उठा ना सके, मेरी नजर में वही सर है सर आमिर जिसे जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके, यानी सर को अल्लाह के आगे झुका दिया और निकाह भी अल्लाह की अताती ही तो है ना, निकाह भी शादी भी अल्लाह की अताती ही तो। जैसे एक दफा एक औरत कह रही थी कि अगर ये अल्लाह का हुक्म ना होता, और बहुत सी आयात ऐसे हैं जिसमें शादी के बगैर अमल नहीं हो सकता, और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है निकाह, वरना मैं कभी शादी ना करती, है ना। तो इंसान क्या करता है फिर, वो ये नहीं देखता ये करना है या ये नहीं करना, इसने मेरी खुशी है या इसने मेरा गम है, वो ये देखता है कि मेरी जो है मेरे रब किस चीज में राजी है, वो करता चला जाता है अपने दिल, वो दिल निकाल देता है जिसमें शैतान जो के फितने होते हैं, चोर होता है, या जो है वो शैतान की सरकशी होती है। और सबसे अहम बात ये है कि क्या मैं और आप ये नहीं चाहते कि अल्लाह हमारी इबादत में लज्जत पैदा कर दे। अब हमारी इबादतों में लज्जत उठ गई है ना, शगफ नहीं है, वो शौक नहीं है कि इर्द गिर्द की कोई खबर ना हो। तो उस सिलसिले में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशखबरी कि जिस मुसलमान की निगाह किसी औरत के हुसन पर पड़े और वो निगाह हटा ले तो अल्लाह इसकी इबादत में लुत्फ और लज्जत पैदा कर देता है।